Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2342-1050 and 2331-4444. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sparsh Saxena.
Dhanyawad Lalima. Namaskar. Market Mantra ke taza ank ke saath hum ek baar phir hazir hain. Aur aap sabhi ka bahut bahut swagat hai. कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे। जैसे कि आज शनिवार है और आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नम्बर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। और चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
नमस्कार स्पर्श, नमस्कार लालिमा और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन।
सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग।
Thank you, Sparsh. Yes, friends, let's begin with the headlines first. Domestic equity benchmarks conclude the week on a positive note. Sensex gained 730 points. Nifty 50 jumps 0.7%. U.S. stocks extend their biggest weekly percentage gains of the year. Dow Jones raises 96 points. S&P 500 gains 0.20%. And Nasdaq adds 37 points. And oil prices settle down nearly 2%. Brent crude settles below $80 a barrel.
घरेलू इक्विटी बेंचमार्क ने किया बढ़त के साथ सप्ताह का अंत। सेंसेक्स 730 अंक ऊपर और निफ्टी में 0.7% की वृद्धि। अमरीकी शेयरों में साप्ताहिक स्तर पर साल की सबसे बड़ी बढ़त देखी गई। डाउ जोन्स में 96 अंक की बढ़त, एसएनपी 500 0.2% और नासडैक 37 अंक ऊपर। और तेल की कीमतों में लगभग 2% की गिरावट। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल के स्तर के नीचे। और सबसे पहले साप्ताहिक शेयर बाजार पर नजर डाल लेते हैं लालिमा
जी। जी,
घरेलू इक्विटी बेंचमार्क ने सकारात्मक रुख के साथ सप्ताह का समापन किया। पूरे सप्ताह में बेंचमार्क सूचकांकों में एक ही दिन गिरावट देखने को मिली और इस कारण पहले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह गिरावट में कमी आई। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ोतरी देखने को मिली और निफ्टी 24,500 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में यह सप्ताह 1% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें प्रमुख योगदान आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी शेयरों का रहा। इस सप्ताह जारी घरेलू मुद्रास्फीति के आंकड़े भी बाजार के लिए राहत का कारण बने।
The domestic equity benchmarks concluded the week on a positive note. For the week ending Friday, the benchmarks experienced declines on one of the four trading days, resulting in a small recovery of first week's fall. The Nifty mid-cap and Nifty small-cap indices also increased. Nifty closed above the 24,500 level. Key indices Sensex and Nifty rallied up to 1% this week, driven by smart gains in IT, consumer durables and realty shares. Domestic inflation data released this week also came as a breather to stock markets. Over the week, the Sensex increased by 730 points or 0.9% and Nifty 50 index jumped by 173 points or 0.7%. The Nifty mid-cap index zoomed by 0.8% and Nifty small कैप इंडेक्स सॉर्ड बाय 0.1%. आफ्टर स्ट्रांग यूएस जॉब्स डेटा ईज्ड रिसेशन फियर्स, इन्वेस्टर्स विल नाउ फोकस ऑन फेड चेयर जेरोम पावल्स स्पीच एट द हैक्सन होल सिंपोजियम फॉर मोर क्यूज ऑन अ रेट कट. मार्केट सेंटिमेंट हैज इम्प्रूव्ड इन येन कैरी ट्रेड विच इज लाइकली टू रिड्यूस मार्केट वॉलेटिलिटी. The focus will be on value stocks in sectors like FMCG, IT, pharma and telecom. IT shares were among the top gainers this week following easing recession fears in the US. Top 5 IT stocks rallied between 3 and 5%. And before we move on, well, we are now joined by Vibhash from Noida. Let's get on to him. Yes, Vibhash, please ask a question.
Hi, good evening.
Good evening, yeah.
Mera prashn ye hai ki mere paas kar small finance bank शेयर है, इट्स अराउंड 3500 शेयर है और मैंने 44 पे लिया था. सो आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड जस्ट वांटेड टू नो व्हाट द लाइक फ्यूचर ऑफ दिस बैंक. थैंक यू
विभाष. इफ यू
जीवन फाइनेंस बैंक.
विभाष, इफ यू लिसन द अनाउंसमेंट्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, आप शुरू में सुनते हैं तो हम लोग यहां पर स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं और निरंतर हर शो में मुझे याद है ये बोला जाता है और इसलिए हम किसी स्टॉक के बारे में तो नहीं बात करेंगे, पर मैं क्योंकि आपने फोन किया है और आप जुड़े हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं ओवरऑल. मैं आपको बता सकता हूं, मैं जिस बैंक का आपने नाम लिया उसके मैं स्पेसिफिक बात तो नहीं करूंगा क्योंकि हम यहां उसको छेड़ते ही नहीं है, पर स्मॉल फाइनेंस बैंक ओवरऑल जो है सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. जितने भी स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ रहे हैं क्योंकि वो लोग लोगों को ब्याज ज्यादा दे रहे हैं, वो लोग थोड़े एग्रेसिव हैं मार्केटिंग में. अभी आपको याद होगा आरबीआई के गवर्नर साहब ने ये बात बोली कि आपको थोड़ा सा एग्रेसिवली मार्केट करना चाहिए, तो वो एग्रेशन की वजह से उनके पास अच्छा बिजनेस इनटेक आ रहा है, उनके खर्चे भी कम हैं तो उनके प्रॉफिट्स अच्छे निकल के आ रहे हैं. तो आपको ब्रॉडली स्पीकिंग तो विभाष में ये कह सकता हूं, पर आगे से आप ध्यान रखें कि किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक, मेरे ख्याल लालिमा और स्पर्श मेरी बात से सहमत होंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक हम यहां पर बात नहीं करते.
और बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ. गाजियाबाद से राजकुमार साथ में हैं हमारे. राजकुमार जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
नमस्कार सर जी.
नमस्कार राजकुमार जी.
सर मेरे पास 25 लाख रुपए हैं और मैं शॉर्ट टाइम के लिए इसको कहीं लगाना चाहता हूँ. फिलहाल के तौर पे मेरे पास एफडी बनी हुई है
जी,
गवर्नमेंट बैंक में
जी.
और प्राइवेट बैंक में मुझे 60 पैसे ज्यादा मिल रहा है, क्या मैं 60 पैसे ज्यादा बैंक में एफडी करा सकूँ? प्राइवेट वालों में कितना मैं विश्वास कर पाऊंगा? और क्या मैं मेटल के तौर पर गोल्ड खरीद सकता हूँ शॉर्ट टाइम के लिए, एक साल दो साल के लिए?
चलिए, तो राजकुमार जी अच्छी बात है आप एक साल दो साल को शॉर्ट टर्म मांगते हैं. हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मेरे साथ इन्वेस्टर जुड़ते हैं जो 2 घंटे को शॉर्ट टर्म मानते हैं, आपको हैरानी होगी. 2 दिन को 2 घंटे को, क्योंकि बहुत अच्छा आपका नेक विचार है और मैं आपको सलाह दूंगा. पहली बात तो मैं आपके दिमाग से अंदेशा निकाल दूं कि प्राइवेट बैंक्स में ऐसा कोई रिस्क नहीं है जो आपको नजर आ रहा है. सभी बैंक्स को आरबीआई मॉनिटर करते हैं और आरबीआई को उन लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है, तो कोई सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में इतना ज्यादा फर्क नहीं है. उसको आप दिमाग से निकाल दें. पर एक अंग्रेजी में कहावत होती है राजकुमार जी, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट. सारा पैसा आपको एक ही जगह नहीं रखना चाहिए. तो पहले तो मैं बेसिकली, चाहे सेफ है या नहीं है, प्राइवेट है या पब्लिक है, मैं तो सीधा पहले आपको कहता हूं कि आप फैला के रखिए. और आपने जिस गोल्ड की बात करी, वो गोल्ड मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि मुझे लगता है अगर आप 2 साल का होराइजन गोल्ड के लिए रख के चल रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा इसमें से करीब 20 से 25% आप गोल्ड ले सकते हैं. इसको आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ईटीएफ्स हैं उसमें आप रख सकते हैं, या आप कुछ गोल्ड कॉइन्स वगैरह जो सर्टिफाइड होते हैं, हॉलमार्क होते हैं, वो आप लेके रख सकते हैं. और बाकी का पैसा आप कुछ प्राइवेट में रखें, कुछ पब्लिक में रखें, तो इसको फैला के रखें. मतलब 25 लाख है तो आप समझिए 5 लाख से 7 लाख रुपए आप गोल्ड लें और उसके बाद 8 से 10 लाख रुपए आप प्राइवेट में रख दें. 8 से 10 लाख रुपए, उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, 0.6% का फर्क है 60 पैसे का, इतना ज्यादा ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा, पर कम से कम रिस्क आपका स्प्रेड हो जाएगा. तो राजकुमार जी, मैं ये मानता हूं कि रिस्क को स्प्रेड करके चलना चाहिए, एक ही जगह नहीं, क्योंकि आपके मन में रिस्क की बात है भी. तो इसको करके आप इन्वेस्ट करिए और हमें बताइएगा फिर 1-2 साल बाद. मार्केट मंत्रा तो परपिचुअल है, चलता रहता है. बताइएगा कैसे रिटर्न आए तो हम भी कभी लड्डू वड्डू खाने की बात करेंगे जब अच्छे खासे रिटर्न आएंगे, खासकर गोल्ड वगैरह पे अगर बढ़ता है तो. जी,
जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे तो व्हाट अबाउट द गोल्ड बॉन्ड्स?
और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मैंने जिक्र किया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड समय समय पर निकलते, इस बार थोड़ा सा लगता है कि कम निकलेंगे
क्योंकि
इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई है, तो मुझे लग रहा है इस बार सरकार थोड़ा सा वो कम रखेंगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। नहीं तो आप उसको गोल्ड ईटीएफ बहुत अच्छे हैं, उनको आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप छोटा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेशक जो गोल्ड के बार्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं, सिर्फ उनको संभालने की थोड़ी पड़ती है, लॉकर वॉकर में जाके रखना पड़ता है, बाकी ऐसी कोई बात मुझे उसमें नहीं ना। ज्वेलरी पर हाँ लालिमा ने बात करी, तो बहुत से लोग ज्वेलरी ले लेते हैं, तो ज्वेलरी पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए। ज्वेलरी को शादी वादी में पहनने के लिए ठीक है, पर मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी ठीक नहीं है,
मेकिंग चार्जेस में बहुत
जी जी इम्प्योरिटीज भी होती है।
अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं एसके शर्मा। एसके शर्मा जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
हाँ जी सर
जी।
अरे मैं आपको शर्मा बोल रहा हूँ, शरद कोहली से बात कर रहा
हूँ। हाँ जी बोल रहा हूँ सर, शरद कोहली बोल रहा हूँ, बताइए।
शरद कोहली को सर जी आपको नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार शर्मा जी, बताइए।
मैं छोटी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं ये पूछता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री सरकार ने भविष्य निधि के जो जितने रिटायरमेंट है पेंशनधारी उनको महंगाई भत्ता दिया ही नहीं 15 साल हो गए, क्या बात है सर?
बहुत स्पष्ट तो मुझे समझ में नहीं आया शर्मा जी ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने
पूछ रहा हूँ
किसी महंगाई भत्ते की बात कर रहे थे।
रिटायरमेंट और पेंशनधारी उनके लिए महंगाई भत्ता सरकार क्यों नहीं दे रही, क्या बात है?
महंगाई भत्ता तो शर्मा जी समय समय पर बढ़ता रहता है, डीएमएस अलाउंस जिसको कहते हैं, उसकी अनाउंसमेंट सरकार करती है अपने बजट के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अनाउंसमेंट करती है। बाकी सरकार का महकमा है, कई पॉलिसीज पर डिसीजन होता है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जी।
राइट राइट, लेट्स मूव ऑन टू चेन्नई। वी आर नाउ जॉइंड बाय कृष्णमूर्ति जी फ्रॉम चेन्नई।
वार्म ग्रीटिंग्स मिस्टर कोहली फ्रॉम चेन्नई।
वार्म ग्रीटिंग्स टू यू ऑल्सो मिस्टर मूर्ति।
वी आर सेलिब्रेटिंग द मद्रास वीक and yeah. My question is,
yeah.
I have three properties,
yeah.
And when I sell them, of course, I have to pay long-term capital gains,
yeah.
And I'm entitled to invest in a specified assets like REC to the extent of 50 lakhs.
Yeah, yeah.
But is it available to every property or only one time in a once in a lifetime?
Mr. Murthy, Section 54, if I remember the section correctly, Section 54 EC. Under which you get this 50 lakh rupees exemption, which you have to invest within 6 months. Whenever you sell a property, so whenever a capital gain, you know, accrues on you, you can use this. So it's not a one time thing. Suppose 2-3 years down the line, you sell another property and you have another capital gain, you can again avail 54EC. So every time a capital gain transaction takes place in a particular year, you will be able to use 54EC benefit. Yes, you're right. They are NHAI bonds or REC bonds. The government takes out from time to time. Well, you can do that accordingly. I hope I have clarified the point that every time you incur a capital gain transaction, you can use it. But it has to be once in a year. Yeah.
जी, और रुख करते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक डॉ गीता गोपीनाथ ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की वृद्धि दर उम्मीद से कहीं बेहतर रही और उम्मीद है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सुश्री गोपीनाथ ने नई दिल्ली में एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत को अगले 5 से 6 वर्षों में रोजगार के लाखों अतिरिक्त अवसर पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि निजी खपत में सुधार होगा और अनुकूल मॉनसून से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। सुश्री गोपीनाथ ने कहा कि दोपहिया वाहनों की बिक्री से लेकर तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान तक भारत में कुल खपत बढ़ रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने यात्री वाहनों, तिपहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों और क्वाड्रीसाइकिल का कुल उत्पादन 24,37,000 यूनिट से अधिक रहा। और इस पर शरद जी आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए वैसे तो और भी कॉलर्स हैं क्यू में, पर क्योंकि गीता गोपीनाथ आईएमएफ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी जो उन्होंने करी कि अब भारत का जो योगदान है दुनिया की अर्थव्यवस्था में 17% है। तो आपको याद होगा हम बात करते थे पहले कि हर छठा व्यक्ति दुनिया का भारतीय है, अब न केवल हर छठा व्यक्ति भारतीय बल्कि भारत छठा हिस्सा भी जीडीपी का करता है, ये पहले ऐसे नहीं होता था। इसीलिए मुझे लगता है आईएमएफ भी बहुत एक्साइटेड है भारत की ग्रोथ, इनफैक्ट भारत इस समय दुनिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे जाती है तो दुनिया को भी उसकी चिंता हो सकती है, यू नो, इतना बड़ा भारत इसमें रोल ले चुका है। तो मैं आपने जो आंकड़े पढ़े और जो आपने कमेंट्स किए, मैं सोचा मैं उसमें ये बात और जोड़ दूं कि गीता गोपीनाथ जी ने इस बात पर भी टिप्पणी करी है।
सर्टनली अ मैटर ऑफ प्राइड। लेट्स मूव ऑन। यू नाउ जॉइन बाय सतीश चंद्रा कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। जी सतीश जी, सवाल पूछे।
गुड इवनिंग कोहली सर।
गुड इवनिंग सतीश।
माय स्पेसिफिक टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फंड।
जी,
इन शेयर्स हैव गोन एंड आई हैव अप्लाइड विद प्रॉपर ऑल द फॉर्म्स ऑन 23rd of August 2023।
जी,
नाउ इट इज ऑलमोस्ट वन ईयर बैक ऑल्सो आई हैव कॉल्ड कोहली साहब एंड देन कोहली साहब वाज सेइंग इट द ऑफिस इज वेरी अंडरनीथ आवर स्टूडियो। यस, आई विजिटेड। टिल डेट दे हैव नॉट क्रेडिटेड। When I visited Sambandh Sardarji there, he says it takes more than one year also. And my question is whether any body is there to look why these shares have been transferred to Investor Education Fund at the first place by the registrar, because they are not following up the procedure. Correct, everything is there.
I got it. Mr. Chandra, see, what happens is why they have transferred is normally when the shares are not claimed by anyone. So government has made the, when this fund never used to be there earlier, you know, the shares were nowhere. People, you could not trace down your shares. At least now you have this IEF. And I remember he called last year also, and incidentally where we are sitting right now on Parliament Street, the office of Investor Education Fund is right across the road. You know, it's just about, I think, a minute's walk from here. And I had only advised Mr. Chandra. So, Mr. Chandra, since he himself said it takes about 1 year, what I would suggest is, I think since you are based out of Delhi, I just saw your domicile, I think you can plan one more visit. And, you know, since you are claiming your shares, so you can make one more visit and see as to why they haven't done it. Maybe there is some technical difficulty. You can also go to their website online. There is a procedure to log your complaint and log your concern online. But I would suggest, since you are based out of Delhi, whenever you find time, you can just walk into the office. They have a PRO also, and they have a customer service desk. You can just reach out to them. And I'm sure this time when you go, the matter would be resolved. Unfortunately, you know, we can only talk about it. I can provide you a solution. There is no system in Market Mantra where Market Mantra can take your complaint to a particular department. If that was the mechanism, we could have done it. But here we can only talk about it, and I can suggest. So make one more visit, Mr. Chandra, and let us know if that worked.
Ji, aur Jaipur se Jitendra ji jod chuke hain. Jitendra ji, swagat hai aapka. Sawal puchhiye.
हाँ सर, बजट आए एक महीना हो गया और आपका दूसरी बार मार्केट मंत्र में आया, मेरा पहला बार नंबर नहीं मिला था। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था
जी
कि अभी जो एक महीना पहले बजट गया वो फाइनेंशियल ईयर नॉट असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आया है
जी।
और अब हम लोग कंपनी का रिटर्न फाइल करेंगे 30 सितंबर तक 23-24 का, तो सरकार अपना 23-24 का एग्जैक्ट बजट कब लाती है जनता के सामने कि इतना हमारा शेयर कैपिटल है या जो भी है, जो भी उसके अंदर आता है वो कब आता है?
जितेंद्र जी, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा डेट्स कंफ्यूज कर गए हैं। आपको याद होगा जो इससे पहले अंतरिम बजट आया था, पहली फरवरी को आया था, उसमें वो एक वोट ऑन अकाउंट की तरह था क्योंकि उस समय इलेक्शंस आने वाले थे, तो उसको पहली फरवरी को निकाला गया था। वो कुछ महीने के लिए होता है जब तक कि नई सरकार इलेक्ट नहीं हो जाती, और अब उसको उसकी पुष्टि या उसको उसका पूरक, अगर मैं हिंदी में कहूं, तो वो ये जो 23 जुलाई को बजट आया ये उसका पूरक है। तो ये जो बजट जब आता है जितेंद्र जी, तो वो इस साल का आता है जो साल शुरू होता है, यानी कि 24-25 का। आप पूछ रहे हैं कि 23-24 का बजट कब आया, तो 23-24 का बजट तो पहली फरवरी 2023 को जब बजट आया था वो 23-24 का बजट था। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब मुझे लालिमा और स्पर्श को बताना चाहूंगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि इस बार तीन बजट हो गए, पहली फरवरी 23 को आया, फिर पहली फरवरी 24 को आया, और अब 23 जुलाई को आ गया, तो तीन बजट है साल बीच में। तो देखें तो एक साल बीता है, शायद इसीलिए जितेंद्र जी कंफ्यूज हो गए। जितेंद्र जी, तो जो पहली फरवरी 23 को आया था वो 2023-24 का था, जो पहली फरवरी 24 को आया था वो एक वोट ऑन अकाउंट था, इंटरिम बजट था, और जो 23 जुलाई 2024 को आया वो इस साल का पूरा बजट है, उसकी पूर्ति हो जाती है जी।
Gee, all right. Let's move ahead and have a look at the U.S. markets. U.S. stocks ended higher on Friday, extending their biggest weekly percentage gains of the year as worries of an economic downturn eased and investors focused on the Jackson Hole Economic Symposium next week. The S&P 500 and Nasdaq notched their seventh straight session of gains as stocks recouped losses from a tailspin 2 weeks ago. The sell-off, sparked by weak economic data and heightened recession fears, confirmed the Nasdaq had entered correction territory. All the three indexes recorded their biggest weekly percentage gains since late October, with the S&P 500 and the Nasdaq posting their first weekly gain in 5. The Dow Jones Industrial Average rose 96 points, S&P 500 gained 0.20%, and Nasdaq Composite added 37 points. And now we move on to our next caller, KK Sinha ji, calling us from Faridabad. Ji Sinha sahab, sawal puchhe.
Hello.
Ji, hello.
मगर मार्केट बाजार टीम और पुलिस आपको नमस्कार.
नमस्कार.
पुलिस साहब, आपने पहले करीब डेढ़ से दो महीना पहले बताया था
जी
कि मार्केट करवट लेगा
जी,
तो बिल्कुल सही हुआ
जी.
और बजट के बाद बिल्कुल ऐसा करवट किया कि सारा स्पेक्ट हम लोग का लाल हो गया
जी.
तो मेरा तो ये क्वेश्चन है कि अभी अगले एक साल के लिए
जी
कौन सा सेक्टर, खासकर डिफेंस, रेल और पावर
जी,
कैसा रहेगा? और इसके अलावा कोई और भी सेक्टर है
जी
तो आप बताएं अगले एक साल के लिए.
आपने जिन तीनों सेक्टर्स का नाम लिया सिन्हा साहब, डिफेंस, रेल और पावर, तीनों ही सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं. और मतलब तीनों में चूज करने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप तीनों पर ही पैसा निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो मैं एफएमसीजी को लेकर बहुत बुलिश हूं, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर भी आप कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंपनी ऑटोमोबाइल्स में बनाती हैं उस पर, क्योंकि ये उभरते हुए सेक्टर है. ये सेक्टर ऐसे हैं जो कि आने वाले समय में जिसकी मांग बढ़ने वाली है. तीन चीजें स्टॉक मार्केट को गवर्न करती है, मैं सिन्हा साहब के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा. और वो तीन चीजें अर्निंग्स, अर्निंग्स और अर्निंग्स. क्योंकि आप प्रॉफिट कंपनी का अच्छा होगा, मैं इसलिए वो उन सेक्टर्स पे दाव लगा रहा हूं जहां पर आपको मुनाफा अच्छे होने को मिलता है. सुना साहब, डिफेंस सेक्टर, पावर बहुत अच्छा है, इसके बाद एफएमसीजी, और आप आईटी सेक्टर भी, हालांकि बहुत बीच बीच में पिटाई होती रहती है, पर मुझे नहीं लगता आईटी सेक्टर लॉन्ग रन में पिटता रहेगा, बिकॉज उसकी डिमांड हमेशा बनेगी. और दूसरा मैंने आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी का और ऑटोमोबाइल्स में, जो इन सेक्टर्स को आप और ट्राई कर सकते हैं. इनमें सब में आप स्प्रेड करके लगाएं और एसआईपी के माध्यम से सिन्हा साहब लगाएं
जी. और मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं कन्हैया जी. कन्हैया जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए प्लीज.
धन्यवाद सर.
जी जी,
नमस्कार सौरभ जी.
जी कन्हैया साहब, आप और मथुरा और कन्हैया, ये तो मतलब ये दोनों चीजें एक ही जगह मिल गई हमें, तो आज हमारे भाग्य अच्छे हैं, बताइए.
विशेषकर इस क्षेत्र में अधिकांश सब बच्चों के नाम ऐसे ही दिए जाते हैं.
ये तो बड़ी अच्छी बात है, बताइए सर सवाल.
108 नाम हो गए.
हाँ बताइए सर
जी.
और सर, जैसे आप बता रहे हैं कि सिक्का जो गवर्नमेंट की तरफ से निकलता है सोने का
जी,
तो हम मार्केट में चांदनी चौक में गए थे, वहां तो एक एक किलो के सोने के बाट की तरह मिलते हैं.
अच्छा,
और 116 ग्राम का बिस्किट होता है
जी.
तो क्या इस पे भी हम जो मार्का होता है उनका, वो देख के ही ये परचेज करें? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि पोस्ट ऑफिस में जाने से अच्छा हम बैंक में ही जाना चाहेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत ढीले कार्य करते हैं लोग, और हमारे क्षेत्र में तो विशेषकर बाबू आए नहीं, तो आप बाद में आइए दो घंटे बाद आइए, ऐसा क्यों होता है?
आपने दो सवाल पूछे कन्हैया जी. पहला आपने कहा कि वहां एक एक किलो के मिलते हैं, तो देखिए एक एक किलो का तो बहुत महंगा, एक किलो सोना इस समय जो है वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर का है, अगर एक किलो की मैं वो जो बार मिलती है. तो जो छोटे कॉइन्स हैं वो आपको सरकारी महकमे से भी उनका डिस्पेंसेशन होता है, वहां से भी बेचे जाते हैं. प्लस जितने भी ज्वेलर्स हैं, जो अच्छे माने हुए ज्वेलर्स हैं, वो लोग सब इसको रखते हैं, और वहां जाएंगे तो आपको हॉलमार्क लगा हुआ बकायदा, वो उसकी एक पैकिंग होती है, ऐसे लूज नहीं मिलता है, वो एक प्लास्टिक के उसमें पैक होता है, उसके पीछे सारा सर्टिफिकेट भी लगा होता है, तो उसको जाके ले. आप अगर आप एक एक किलो की बात करें, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बड़ा निवेश कोई करना चाहते हैं, तो बड़ा निवेश करना चाहते हैं बिल्कुल, एक किलो का भी अगर बार लेंगे आप, तो उस पर भी हॉलमार्क होना चाहिए. वहां तो और ज्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि वहां आपका ज्यादा पैसा जा रहा है, तो बिल्कुल आपको देख के लेना चाहिए. दूसरा आपने कहा, देखिए पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों अलग अलग महकमे हैं. बैंक तो किसी और पर्पज के लिए, पोस्ट ऑफिस भी आपको निवेश के कुछ साधन खोलता है. ये बात आपकी ठीक है कि थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस पे जो लोड है और उनका जो वर्क कल्चर है थोड़ा फर्क है, मैं किसी चीज की आलोचना नहीं करता, पर अगर आपको ऐसा लगता है, पर पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कन्हैया जी जो कि सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही मिलते हैं. कभी मौका लगा लालिमा और स्पर्श तो बताऊंगा, एक पोस्ट ऑफिस का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जिसको हम आरडी कहते हैं, और मैं आपको अभी, क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, उसका मैं आपको मैथमेटिक्स जब बताऊंगा तो आप देखेंगे कि बैंक के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, इतना इंटरेस्टिंग वो प्रोडक्ट है, और उसमें करीब 10% से भी ज्यादा रिटर्न आता है, और पोस्ट ऑफिस में टीडीएस नहीं करता, हालांकि टैक्सेबल तो है पर टीडीएस नहीं करता है. तो अपनी अपनी दोनों का महत्व कन्हैया जी, जब आपको लगे कि आपको पोस्ट ऑफिस, ये भी मैं बताऊं तो सॉवरेन है, और बैंक तो आपको पता है डीजीआईसीसी से 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है, तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं कन्हैया जी। जब आप पोस्ट ऑफिस में वो जो लाइन लगती है और जो थोड़ा आप कह रहे हैं वहां का स्टाफ थोड़ा सा दूसरे तरीके से डील करता है, तो उनके फायदे भी बहुत हैं। तो आपको मैं चाहूंगा कि आप दोनों जगह जब जब आपको जैसे जैसे जरूरत हो उसका आप उस तरीके से इस्तेमाल करें।
सर जी, अ डाउट कम्स टू माई माइंड, द पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एंड द ट्रांजैक्शंस, आर दे आल्सो अंडर द वॉचफुल आई ऑफ द आरबीआई? और
इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आर पार्ट ऑफ द सॉवरेन गारंटी, सो इनफैक्ट गवर्नमेंट, व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैपन, लॉट ऑफ योर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स गो टुवर्ड्स दैट। सो आई फील दैट पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आर वन नॉच अप in terms of safety and everything, but I think because his doubt came from, because to be able to avail the benefit of that you have to go through a bit of a pain. But I must tell, if Mr. Kanhaiya is also listening to me, ki Kanhaiya post office bhi ab dheere dheere apne aap ko digitize kar rahe hain, to aapko ab anywhere banking jaise hoti hai, aap kisi bhi branch mein jaake aap operate kar sakte hain, ab aapko anywhere post office bhi dheere dheere aap agle 1-2 saal mein dekhenge kisi bhi post office se jaake, to aapko jo post office acha nahi lagta hai aap kisi dusre pe chale jaye, aur dheere dheere ye online bhi ho jayega. Main aapko ye bhi bata do, is pe bahut tezi se kaam chal raha hai, ho sakta hai आपको कल को पोस्ट ऑफिस जाना ही ना पड़े और बैठे बैठे आप अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से आप अपना काम कर सके।
जी जी, और बेंगलुरु से हमारे साथ श्रीधर जुड़ चुके हैं। श्रीधर जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए।
यस सर, मिस्टर श्रीधर, टेल मी।
यस सर, शैल आई आस्क माय क्वेश्चन?
प्लीज डू दैट।
हेलो।
या प्लीज प्लीज आस्क।
कॉलिंग फ्रॉम बैंगलोर।
या
टेल। थैंक्स फॉर नो, गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्रा टीम।
जी,
आई हैव डीमैट अकाउंट विथ वन दिस थिंग।
ओके।
एंड एक्चुअली यू नो आई हैव आस्क्ड देम टू क्लोज इट एंड ट्रांसफर द शेयर्स टू सम अदर डीमैट अकाउंट ऑफ माइन।
ओके।
विच दे आर नॉट डूइंग।
ओके।
दे कीप ऑन सेंडिंग दैट दिस यू ओ दिस मच मनी एंड कीप ऑन सेंडिंग सम मेल्स एवरी मंथ। What I should do for that?
Mr. Sridhar, technically they cannot block your account, but if there are some dues pending, because to maintain a DMAT account there are dues, you know, any broker whosoever is maintaining the depository holding for you, I think is liable, is has got a right to charge you some money annually for maintaining. So maybe there are some dues, because if the dues are paid, Mr. Sridhar, they cannot block it. But if they are blocking it even after the dues, you have a right to make a complaint to SEBI. They are all covered under SEBI, and you can also make a complaint to NSDL. NSDL is the CD, you must be knowing there are two main depositories. You can complain to CD or NSDL for this thing, and they will immediately resolve it. Although I am sure once the dues are settled, they will not block it. Maybe you can have a word in person. Yeah.
All right. We are now joined by RS Dahiya online from Delhi. जी दहिया जी, सवाल पूछे।
सर नमस्कार।
नमस्कार जी।
मेरा पीएम जी सवाल है, दो छोटे छोटे।
जी,
फर्स्टली जो शेयर मार्केट पे काले पीपल छाए हुए थे।
दहिया साहब, अपना रेडियो वॉल्यूम प्लीज डाउन कर लीजिए, आपकी आवाज गूंज रही है।
जो यूएसए एंड जापान फाइनेंशियल क्राइसिस एंड जियो पोलिटिकल सिचुएशन, ये सब काले बादल छट गए, खत्म हुए क्या? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन एनआरआई इन एनएक्स यू सी दी एसेट वेदर दे आर स्टॉक्स एफडी मनी और प्रॉपर्टी सेल, व्हाट आर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनआरआई?
ओके, टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई थिंक बादल आपने कहा छट गए कि नहीं, वेदर द क्लाउड्स आर गॉन, आई थिंक आजकल तो वैसे ही मॉनसून के भी बादल आए हुए हैं। खैर चलिए, ये तो हल्की फुल्की बात हुई, बट यू आर राइट, आई मीन द क्राइसिस इज नॉट ओवर, वी वर जियो पोलिटिकल टेंशन आर स्टिल देयर, यू नो, इन द वेस्ट एशिया बिटवीन रशिया यूक्रेन एंड द फ्यू अदर बॉइलिंग पॉइंट्स हियर एंड देयर। सो वो बादल अभी छटे नहीं है, मार्केट के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी और बुरी खबरें मंडराती रहती है बादलों की तरह, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरा आपने कहा एनआरआई इनहेरिटेड, जब एनआरआई इनहेरिट करता है तो उसके ऊपर जो इनकम आती है भैया साहब, वो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। तो खाली इनहेरिट करने पर कोई टैक्स नहीं है, पर जब वो उसको बेचेंगे या उससे उनकी आमदनी होगी उस पर भैया साहब दे विल हैव टू पे टैक्स।
All right, let's move on. We can't have Market Mantra without mention of oil prices. So oil prices settled down nearly 2% on Friday, little changed on the week with Brent crude below $80 a barrel as investors tempered expectations of demand growth from top oil importer China. Brent crude futures fell 1.7% to settle at $79.68 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate crude futures declined by 1.9% to $76.65. And friends, before we close, well, first of all, thank you very much, Sharad Kohliji, for joining us in Akashwani Studios.
It was my pleasure. Thank you, Alanima. Thanks,
Parshni. And before we move on, friends, it's time to wind up the show. The headlines again. Domestic equity benchmarks conclude the week on a positive note. Sensex gains 730 points. Nifty 50 jumps 0.7%. U.S. stocks extend their biggest weekly percentage gains of the year. Dow Jones raises 96 points. The S&P 500 gains 0.20%. Nasdaq adds 37 points. And oil prices settle down nearly 2%. Brent crude settled below $80 a barrel. With that, we end this program. Goodbye.